नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग यूईआर का दूसरा खंड शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली में बुनियादी ढांचे का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति संकल्पित है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ भाड़ कम करने के लिए विकसित की गई हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली और आसपास के इलाकों में संपर्क में उल्लेखनीय सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात को सुगम बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10 किलोमीटर से अधिक लंबे दिल्ली खंड का निर्माण 5,360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आगामी बिजवा रेलवे स्टेशन तथा द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यूईआर सेकंड के अलीपुर से ढिचाओ कला खंड का निर्माण बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए लिंक के साथ लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% से अधिक की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता के कारण पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब मोबाइल आयातक नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। श्री गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ वी नारायण ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री शुक्ला 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले भारतीय हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चू ह्यून के साथ नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार, विनिर्माण, समुद्री और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यांत्रिक मेधा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल दो दिन की यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के निमंत्रण पर हो रही है। श्री वांग यी श्री डोवाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज से दो दिन की नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर हो रही है। भारत और नेपाल के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग काफी बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना होगा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है जबकि यूक्रेन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक के बाद श्री ट्रंप ने यूक्रेन से समझौता करने की अपील की। श्री ट्रंप ने कहा कि उनका काम दोनों देशों के बीच बातचीत कराना है और रूस यूक्रेन को सीधे शांति समझौता करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष विराम अक्सर स्थायी नहीं होते। भारत की तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में फाइनल में कल तानिया ने जापान की कानाई सकाई को हराया। तानिया का इस वर्ष का ये पहला और करियर का चौथा अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब है। वह पिछले वर्ष अजरबैजान इंटरनेशनल में उप विजेता रही थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।